नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने EOS-05 वाले GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
I am very happy to announce that GSLV.
मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ब्रिक्स देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय नेपाल में बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय के अनुसार रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है, जबकि आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404 IN-20 इंजनों की नई खेप भेजी है।
जी एरोस्पेस द्वारा इंजनों की आपूर्ति से देश के स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन इंजनों की आपूर्ति HAL और जी एरोस्पेस के बीच वर्ष 2021 में हुए समझौते के तहत की जा रही है। इस समझौते में तेजस MK-1A के लिए 99 इंजनों की आपूर्ति शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में आए बाधाओं के कारण इंजनों की आपूर्ति में लंबे समय से देरी हो रही थी। इसके चलते कई तैयार तेजस विमानों को इंजन मिलने का इंतजार करना पड़ रहा था। खेप मिलने से तेजस MK-1A विमानों के उत्पादन और उनकी आपूर्ति में तेजी आने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं अर्चना रंजन।
इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार का रिकॉर्ड बनाया है। एक रिपोर्ट।
जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने 1,413 दिन पूरे कर पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इटली में पिछले 80 वर्षों में लगभग 70 सरकारें बन चुकी हैं और अगले वर्ष चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने अक्टूबर 2022 में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। उनकी पार्टी की नौ फांसीवादी पृष्ठभूमि को लेकर उस समय यूरोपीय देशों और निवेश बाजारों में चिंता थी। हालांकि प्रधानमंत्री मेलोनी ने व्यवहारिक तरीके से सरकार चलाई। उन्होंने यूरोपीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया और वित्तीय अनुशासन पर बल दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
यमन में दक्षिण पश्चिमी ताइज प्रांत में सरकारी सुरक्षा बलों और हाउसी विद्रोहियों के बीच संघर्ष में लगभग 25 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मारे गए लोगों में 15 सरकारी सैनिक और 10 हाउसी सदस्य शामिल हैं। संघर्ष हाउसी लड़ाकों के सरकारी ठिकानों पर बड़े हमले के बाद शुरू हुआ। हाउसी लड़ाकों ने कुछ ठिकानों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सरकारी बलों ने जवाबी कार्रवाई कर उन्हें वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास पश्चिम अफ्रीकी प्रवासियों से भरी एक नाव हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी कई और लोग लापता हैं। स्पेन की समुद्री बचाव सेवा ने बताया कि नाव में सवार 44 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बताया जा रहा है कि नाव अगस्त की शुरुआत में गाम्बिया से 127 लोगों को लेकर रवाना हुई थी। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।